یہ ناخون کا چوتھائی حصہ بھی اگر جل گیا تو کیا ہوتا ہے؟ سدنان لگاتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی بھی فکر کرتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے یہ زہر ان کے سکون سے بیٹھنے نہیں دے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا ہوا، میرے شیخ مرشد حضرت ماشاء اللہ صاحب اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ دہلی کے اندر فسادات ہو گئے، دہلی میں فسادات ہو گئے، ہندو مسلم فسادات ہو گئے. فسادات نہیں تھے، حضرت نے فرمایا کہ اس طالب علم کا مستفی مسجد کے اندر اپنا مطالعہ کرتا تھا کتاب کا، وہیں سے ایک بارات گزر رہی تھی، امیر و کبھی اچانک آندھی آئی، طوفان آیا، ساری بارات ادھر سے ادھر ہو گئی، کوئی جس کا منہ جدھر ہوا وہ اس طرف چلا گیا. تو جو دلہن تھی کہ بھاگی، اس نے دیکھا سامنے مسجد ہے، اس نے کہا چلو جان بچانے کے لیے مسجد میں گھس جاؤ. تو یہ مسجد کے اندر گھس گئی، دیکھا تو سامنے طالب علم بیٹھا ہوا حدیث کا مطالعہ کر رہا. اب یہ لڑکی ایک طرف موت میں بیٹھ گئے اور دیکھنے لگی کہ وہ لڑکا جس چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس چراغ پر انگلی رکھتا چلا جا رہے تھا. کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، رات گزر گئی، طوفان مطلب جب جمع ہوئے، طوفان بن گیا، سب جمع ہوئے، دلہن کو ڈھونڈا گیا تو مسجد سے نکلی. تو دلہن کا تو انتقال ہو گیا تھا اس طوفان کے اندر. شیخ نے فرمایا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹی سے تیری شادی دوبارہ کرانا چاہتا ہوں، پتا کس نے کرا؟ اس نے کہا کہ اس رات جس مسجد میں ٹھہری تھی وہاں ایک طالب علم اللہ تعالیٰ تھا، اس سے میں شادی کر لوں. اس نے کہا وہ غریب ہے. کہا غریب ہے لیکن کوئی بات نہیں، اکیلے تھا، اس کو قدرت تھی کہ میرے ساتھ وہ گناہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. فرمایا جب شادی ہو گئی بابا دیکھو تقوا کا انعام کیا ماتا نے ایک کفیل کو بچے اندازی عطا کر دی. پھر اس نے پوچھا اس کی بیوی نے کہ تم رات کو یہ کیا کرتے تھے کہ چراغ پر انگلی رکھ دیتے تھے، تو اس طالب علم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں جب میرے دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا تھا کہ تو بھی اکیلا ہے یہ بھی اکیلی ہے، لہٰذا گناہ کرنے کون ہے دیکھنے والا، تو میں چراغ پر انگلی رکھ کر کے یہ سوچتا تھا کہ اے جس دن دل یہ بتا تو چراغ کی آگ سے برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جب مجھے جلن ہوتی تھی تو میں ہاتھ ہٹا دیتا تھا کہ اللہ دنیا کے اندر جو آگ ہے اس کو تو میں برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کے اندر اگر جان کرے گا تو اچھی طریقے سے میں برداشت کرے گا. گناہ رکھا انسان کے اندر، لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ہم سے گناہ ہو گیا. گناہ ہوتا نہیں، گناہ انسان کرتا ہے، بالکل چراغ سے کرتا ہے، گناہ ہو نہیں جاتا. تو انسان یہ کہے کہ میں تو سڑک پر جا رہا تھا، گاڑی میرے اوپر آ کر چڑھ گئی، تو کہیے تو ضرور لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہوگا، اگر کنارے چلتا حفاظت سے چلتا تو گاڑی تھوڑی تیرے اوپر آ کر کے چل گئی. تو دادا نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں لکھا تھا گناہ ہونا، فرمایا نہیں، تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا. حضرت حکیم الامت سے تاریخ دیکھیے تقدیر کی، فرمایا تقدیر نام ہے اس کا علم الہی کا، اللہ کے علم میں کر یہ بندہ گناہ کرے گا، اللہ نے لکھ دیا، نہ کہ امر الہی کا. کوئی باپ اپنی اولاد کو بنا کا حکم دے سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنی اولاد کو بنا کا حکم نہیں دے سکتا، کوئی شریف باپ اپنے بیٹے کو چوری اور ڈاکی کا حکم نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنی ہوتے ہیں بنا کا حکم کیسے دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے بنا کا حکم دے رہی ہے؟ یہ تقدیر کا بہانہ کر کے انسان دادا نے پرواہ دیتے ہو. ایک بجلی کا پاور ہاؤس ہے، ایک شخص ہے پنکھا صاف کرنے کے لیے چڑھا، مطلب اسی مسجد کے اندر پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے، اس نے یہاں سے بچت بند کر دیا، بند کر کے پنکھا صاف کر رہا تھا، اس کے کسی دوست نے آ کر کے چلا دیا، اب اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میری تقدیر میں لکھا تھا تیرا ہاتھ کٹنا، वो क्या कहता है, तकदीर में नहीं लिखा था, तूने खुद जानबूझ कर कतल करवाया जिससे मेरा हाथ कटा है। तो फरमाया गुनाह कर, गुनाह का माता तो अल्लाह ने रखा है, वहां से बिजली आ रही है, लेकिन बटन तुम्हारे हाथ से दे दिया कि जब जाओगे बटन दबाकर गुनाह कर लो, जब जाओगे बटन दबाकर चलाओ गुनाह नहीं होगा। जो इसको तकदीर की तरह डाल देते हैं कि हमारी तकदीर में लिखा था ये गुनाह, लिहाजा हमसे ये गुनाह हो गया, नहीं गुनाह होता नहीं। फरमाया गुनाह करता है इंसान, शैतान ने क्या किया था, अल्लाह के हुक्म की लापरवाही की, लापरवाही करने के बाद क्या कहा अल्लाह ताला फरमाते कि उस जालिम ने इंकार कर दिया, तकज्जुब के अबा तकज्जुब करने लगा, वस्तगफरा और तकब्बुर आ गया उसके अंदर, वकान मिन काफिरीन और वो मेरे नाफरमानों में से हो गया। किस बात पर हजरत हकीम उम्मत ने लिखा है कि शैतान ने क्या कहा था, जिनके शैतान से बड़ा आरिफ कोई नहीं है, शैतान जितना बड़ा आरिफ था इतना बड़ा आरिफ कोई नहीं हो सकता। जमीन का कोई हिस्सा, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर शैतान ने सजदा ना किया, इतना बड़ा इबादत गुजार था और आरिफ इतना बड़ा कि अल्लाह ताला गैज और गजब की हालत में उस वक्त भी अल्लाह से क्या कह रहा है, हम दुनी इलायों में बाजूर या अल्लाह मुझे एक गुजरते मालूम करा मोहर आता कीजिए ताकि मैं आपके बंदों को बहकाकर। हजरत की उम्र से लिखा कि अगर ये जालिम उस पर यह कह देता उन जुर्मी या अल्लाह एक नजर गलत उस पर डाल दीजिए, फरमाया उसी वक्त अल्लाह ताला इसको माफ कर दे। लेकिन अलिम ने क्या किया, अपने गुनाहों पर नदामत नहीं दिखाई बल्कि अपनी बड़ाई दिखलाई, तकब्बुर दिखलाया, फरमाया अल्लाह ताला के दरबार से मंजूर करके इनकार किया गया। फरमा अगर गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद मायूस न करो, कितने भी गुनाह हो जाए, 60 साल 70 साल की उम्र हो गई शैतान मायूस करता है, अरे बड़े भैया तुम्हारी तो गाड़ी सफेद हो गई, तब तक गुनाहों से माफी मांगोगे, ये कमजोर हो गई, यही गुनाह की आदत है तुम्हें, रोज करते हो रोज माफी मांगते हो, ऐसी माफी से क्या फायदा। नहीं अल्लाह ताला दादा ने फरमाया अगर बच्चे को 10 साले लग जाए तो जितनी दफा बच्चा दर्द करता है बहाना करता है माँ उतनी दफा नहलाती है, उतनी दफा पाउडर लगाती है, उतनी दफा उसके कपड़े बदलती है, उतनी दफा खुशबू लगाकर उसको तैयार करती है, ये नहीं कहती कि तुमने दिन में 10 दफा बहाना कर दिया या तुझे मैं नारी में पीती हूँ। बोलो कोई माँ ऐसा कहती है, जब फरमाया कि माँ की एक महदूद मोहब्बत, माँ की मोहब्बत महदूद है या नहीं है, सिर्फ जमीन के ऊपर ऊपर मोहब्बत है, कब्र के अंदर मोहब्बत नहीं जाएगी माँ की, जितना भी प्यार करती हो, फरमाया महदूद मोहब्बत होते हुए माँ बच्चे को नहीं झुलकाती, तो फरमाया अल्लाह की रहमत तो गैर महदूद है। हजरत आपने दिले का रहमत लाए फरमाते थे कि अल्लाह की रहमत गैर महदूद का अंदाजा किससे लगाओ, फरमाते थे कराची की आबादी कितनी है, 1 करोड़ के ऊपर आबादी है, फरमाया 1 करोड़ आबादी का पेशाब पखाना प्रदर्शन में ऐसी जगह जाकर गिरता है, फरमाया वहाँ एक लहर आती है सारा पेशाब पखाना बहा कर ले जाती है और वही जो कि आसन वजू करके उतुल करके नमाज पढ़ा सकता है, तो एक आदमी हालत खिलाफत में जाए वहाँ जाकर उतुल करके वो पास साफ हो जाता है। फरमाया देखो एक समंदर की महदूद समंदर की महदूद जोश मौज के अंदर जब ये सवाल है कि 1 करोड़ आदमी का पेशाब पखाना एक लहर में बहा कर ले जाती है, तो अल्लाह ताला की गैर महदूद रहमत के अंदर एक मौज इंसान को लग जाए तो क्या हाल होगा। अल्लाह की रहमत तो गैर महदूद है, समंदर महदूद है, समंदर भी महदूद, उसकी मौज भी महदूद, लेकिन अल्लाह की रहमत भी गैर महदूद और उसकी मौज भी गैर महदूद है। ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हो कि अल्लाह मुझे इतना आसा हो गया, हाँ अपने गुनाहों पर नाजिक होता रहे, अल्लाह ताला से माफी मांगता रहे, एक नए की रहता आएगा कि अल्लाह ताला सच्ची तौबा अता फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इस वक्त तुम अपने रब से इसका काम तलब करो। क्या मतलब? दादा ने फरमाया कि देखो बाप को जो चीज औलाद को देनी नहीं होती उसकी इतना भी नहीं करता उसको, और जो चीज देनी होती है उसकी इतना कर देता है कि बेटा मेरे पास आज 10,000 रुपए। क्या मतलब है कि तुझे अगर जेब भर चाहिए तो आकर मुझसे मांग ले। ये पैसे की इतना देना ये निशानी है कि बात कह रहा है कि मुझसे आकर जेब खर्च ले ले। हमारे अल्लाह का ये कहना है सब तुम रोक कर दो, तुम अपने रब से इसका बात तलब करो। क्या मतलब? तुम माफ करना चाहते हैं जब तो बता रहे हैं, माफ करना चाहते हैं जब इतना दे रहे हैं कि तुम मुझसे इसका बात तलब करो। फरमा जरा इसका पूर्व के बाद रब पसंद क्यों लाए फरमाया, हालांकि अल्लाह ताला के बेशुमार नाम है। अस्तग़फिरुल्लाह के रहते अल्लाह से इसका तलब करो, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ बोला इसका पूर्व रब पसंद अपने रब से इसका तलब करो। और रब का माना क्या है? जो किसी नाफिस को पालते पालते बजे कमा तक पहुँचा दे। रब का माना क्या है? जो किसी नाफिस को पालते पालते परवरिश करते करते धंधे कमा तक पहुंचा दे। दादा ने फरमाया हर पालने वाले को अपनी पाली हुई चीज से मोहब्बत होती है। तो दादा ने फरमाया देखो एक तो सत्कार का हुक्म दे रहा हूँ, तो रब इसलिए नाजिल कर रहा हूँ कि माँ के पेट में तुम्हारी परवरिश मैंने की, लिहाजा मोहब्बत का रिश्ता जो है एक दफा भी छोड़ गए अल्लाह मुझे माफ कर देंगे, माफ कर दो। अपने रब से इस्तग़फ़ार तलब करो। तो रब का क्या माना हुआ? यानी जो हमें पाल रहा है, हम समझते हैं हमें लक्ष्मी पाल रही है, हमें माँ बाप खिला पिला रहे हैं। अरे माँ बाप के उसको देता कौन है जो खिला पिला रहे हैं? अगर अल्लाह ताला माँ बाप को न दे तो माँ बाप कहाँ से खिलाएंगे? अगर अल्लाह ताला माँ की छाती में दूध ही कतरा न करे तो माँ कहाँ से दूध पिलाएगी? दादा ने फरमाया इसकी अजीब मिसाल दी, फरमाया देखो माँ की छाती में खून होता है, लेकिन जब बच्चा रोता है तो फरमाया अल्लाह ताला माँ के मोहब्बत जोश में आती है और उस खून को अल्लाह ताला जो सुर्ख है उसको अल्लाह ताला सफेदी से तरतीब करके दूर करा करके बच्चे का पेट भर देते हैं। फरमाया इसी तरीके से अगर कोई जब गुनाह कर रहा है, गुनाह करते करते अगर उसको रोना आ जाए तो समझ लो अल्लाह ताला का फजल जो था अब तुम्हारे रोने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से तब्दील हो जाएगा, तो अल्लाह ताला की रहमत ऊपर बरसने लगेगी। बच्चे का रोना माँ की शादी में दुख पैदा कर देता है और बंदे का रोना अल्लाह के फजल को अल्लाह की रहमत से तब्दील कर देता है। अल्लाह का फजल लाजिम होने वाला है सब पर, गुनाह करते करते अचानक उसको अल्लाह की याद आ गई, अचानक उसको अपने गुस्से अपने गुनाहों पर नदामत आ रही हो गई, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ कर दिए, रोने लगा, उसको रोना आ गया या रोना नहीं भी आया उसके दिल से कह दिया या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कितना आता आपसे खाया, कितने गुनाह किए, हर दफा अल्लाह ने जिद्दत और गुस्साई उठाई, लेकिन किसी को इज्जत गुनाह के रास्ते से इज्जत नहीं मिली, गुनाह के रास्ते से आज तक किसी को इज्जत और सुकून नहीं मिला। हाँ परेशानी और जिद्दत जरूर मिली है, इज्जत और सुकून अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में रखा है, कि जो मेरे रास्ते में चलता है उसको अल्लाह ताला इज्जत भी अदा फरमाते हैं और सुकून भी अदा फरमाते हैं, और फिर सुकून उसका ऐसा होता है कि उसके पास पैसे वालों को भी अल्लाह ताला सुकून अदा फरमाते हैं। तो हमारे क्या करना इसका शुरू रख लो, तुम अपने रब से इस्तफा के रख लो। आगे अल्लाह ताला अपनी सिफत बयान करवा रहे हैं, लेकिन जुमला खबरिया के तौर पर इन लोगों का रफा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बखने वाला है। क्या कहते हैं? अरे माँ बाप से अगर बच्चे से गलती हो जाए और कोई बच्चा ऐसा है जो शर्माता है माँ बाप से माफी मांगते हो, सादे बच्चों को शर्म आती है कि हम किस तरह माफी मांगे, सादे बच्चों के अंदर अकड़ होती है कि हम किस तरह माफी मांगे, तो बड़े क्या समझाते हैं? अरे बेटा जा तेरी माँ ही कह रहे एक दफा बोलेगा तुझे माफ कर देगी, जाके तो देख दुनिया में क्या दस्तूर है, घर के बड़े बूढ़े क्या समझाते हैं? बेटा जा माँ ही कह तेरी एक दफा माफी मांग, माँ माफ कर देगी। जब माँ के पास भेजते एक दफा जा माफ कर देगी, तो वाले भी यही सिखलाते हैं जितनी दफा गुनाह हो जाए जिंदगी के आखिरी
ہم ہمارے علم کے ساتھ چلے جاؤ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور صرف معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا دستور کیا ہے, کسی سے غلطی ہو گئی, ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی, شیر کے حق میں کوتاہی ہو گئی, اولاد بیوی کے حق میں کوتاہی ہو گئی, بھائی کے حق میں کوتاہی ہو گئی, وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. لیکن کہتا ہے تم نے غلطی ایسی کی ہے کہ معاف کر رہا ہوں لیکن میرے سامنے نہیں آنا, میرے سامنے نہیں آنا, معاف کر دیا تجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے معاف نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا, معافی عطا نہیں کرتا, معافی عطا کرنے کے بعد محبت بھی کرتا ہوں میں اسے. دادا نے فرمایا انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ دل کے اندر بات رکھ لیتا ہے, اگر مجبور ہو گیا غلطی ہو گئی اولاد سے, ایسی غلطی ہو گئی کہ سب رشتے دار آ گئے, بچے کے چچا اور پھوپھیاں سب آ گئی, کہہ رہے چلو اس کو معاف کر دو, تو باپ کیا کہتا ہے؟ جا تجھے میں نے معاف کر دیا لیکن آئندہ اپنی شکل صورت مجھے نہیں دکھانا. اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ جا یہاں سے اپنی شکل نہیں مت دکھانا, اللہ تعالیٰ فرماتے میرا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے, معافی کے لیے دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی سزا لگائے. ہم آپ کو یاد کرتا رہے, اللہ سے معافی مانگتا رہے, کسی دم میں دادا نے فرما کے مت سمجھو کہ میں نے جو عبادت کی اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا, کیونکہ انسان کو اللہ نے جتنی بھی قوت دی ہے سب محدود ہے اور اللہ کی عظمت غیر محدود ہے, لہذا ایک محدود ایک غیر محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا. بولو بھائی آپ ادا کر سکتا؟ آپ ایک سطلا ایک بالٹی پانی ایک لوٹے میں سما سکتے؟ کوئی نہیں سما سکتا. کوئی بھی صاحب عقل انسان اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک بالٹی کا پانی ایک لوٹے میں آ جائے, ایک حوض کا پانی ایک تالاب میں آ جائے, تالاب کے اندر دریا آ جائے, دریا کے اندر سمندر آ جائے, کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ یہ عقل نہیں مانتی کہ محدود کے اندر غیر محدود کو ڈال دیا جائے. تو اللہ کی رحمت غیر محدود ہے, انسان جتنے گناہ کر لے, دادا نے فرمایا گناہ کرتے کرتے انسان تھک سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا, کیونکہ اس کی رحمت غیر محدود ہے, اللہ کی رحمت غیر محدود ہے. اسی لیے حضرت صاحب قربانی صاحب محمد دین رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر موجود قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چاقم کے سامنے لکھوایا ہوا ہے کب اپنی رحمت کی اعلیٰ مدد کی, میرے غصے اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی اور میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. کیا مطلب؟ کہ بندہ جتنا بھی گناہ کرے جتنے گناہ کرے لیکن اگر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق کا توبہ عطا کر دی تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو تیار ہی نہیں ہوتا, یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت سب ہی کرتا ہے, چاہے گناہگار ہو چاہے کوئی بھی ہو. حضرت اکیم الامت نے معاملہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے, دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے, دیکھا کہ ایک بچھو آیا دریا کے کنارے کنارے بچھو چل رہا تھا, یہ دیکھنے لگے کہ چلو میں بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوں دیکھوں یہ بچھو جاتا کہاں, تو کہنے لگے میں بھی چلتا ہوں بچھو کے پیچھے پیچھے. اچانک دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک کچوا آ کر کے وہاں کھڑا تھا, یہ بچھو جا کر اس کچوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. اب یہ کچوے نے چلنا نہیں کر دیا پانی کے اندر, کہنے لگے میں بھی اس کے اندر پانی کے اندر اتر گیا دیکھوں یہ کہاں پہ جاتا ہے. جہاں جب دریا کے اس کنارے پہنچا تو بچھو یہ کچوا کنارے پر لگا اور بچھو اتر کر اس طرف چلا گیا. کہا میں بھی اتر کے بچھو کے پیچھے پیچھے گیا. کہا آگے جا کر کے دیکھا تو ایک شخص شرابی شراب کی حالت میں نشے کے اندر تھا اور وہاں کھڑا ہوا تھا, اور ایک سانپ وہی قریبی میں اس کو ڈسنے کے لیے تیار تھا. یہ بچھو گیا اور جا کر سانپ کو ڈنگ مارا اور سانپ وہیں مر گیا, اور یہ بچھو واپس آیا اور اسی کچرے پر بیٹھ کر دریا پار کر کے چلا گیا. ये आए आकर के इन्होंने उस शराबी को उठाया, उसका मुंह धुलाया, उसको होश दिलाया। उसने कहा तेरा क्या नाम है, क्या करता है? उसने कहा मेरा ये नाम है अवधेश। कहा है बेहोश कैसे हो गया था? कहा शराब पी ली थी इसलिए बेहोश हो गया था। कहा जाने क्यों अल्लाह से बातें कहा, अल्लाह ने तेरी जान कैसे बचाई? जब उसने सुना कि अल्लाह ताला की रहमत में काफिल और अल्लाह की रहमत में उसे गफलत की हालत में अल्लाह ने बिच्छू को भेजा मेरी जान बचाने के लिए, उसने कहा हजरत तौबा करा लीजिए, आज के बाद में कभी अल्लाह की लापरवाही नहीं करूंगा। हम समझते कि गुनाह करने के बाद हम अल्लाह से वाकिफ हो गए, हम अल्लाह से वाकिफ हो गए, अल्लाह की रहमत हम से वाकिफ नहीं होगी। अल्लाह की रहमत तो मुतवज्जे है अपने बंदे की तरफ कि कब मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे और मैं बंदे को माफ कर दूं। हजरत मौलाना डॉक्टर गुरेज साहब, हजरत आले किला डॉक्टर गुरेज साहब बिल्लाही शेखा करते थे, रोटी या खल्क मेरी खराबी को देखकर, रोटी या खल्क मेरी खराबी को देखकर बोलता हूँ मैं कि हाय मेरी चश्म तर में, रोटी है खल्क मेरी खराबी को देखकर रोता हूँ मैं कि हाय मेरी चश्म तर में। फरमाता है ये उम्मत रो रही है कि अल्लाह उस उम्मत का क्या होगा, ये अल्लाह रो रहे हैं जो दुनिया में भी रो रहे हैं, ये अल्लाह उस उम्मत का क्या हाल होगा और उम्मत का हाल ये कि उसको कुछ जन्म नहीं। अल्लाह ताला की रहमत को पहचानते नहीं, अरे अल्लाह की रहमत इतनी गैर महदूद है, इतनी गैर महदूद है कि इंसान अगर 99 साल तक काफिर रहे तो अगर मरते वक्त उसको कलमा नसीब हो गया तो भी अल्लाह ताला पूरी जिंदगी के कुफ्र को माफ कर देंगे, पूरी जिंदगी का कुफ्र उसका माफ। ये नहीं फरमाइए कि तूने तो 99 साल तक मेरी लापरवाही की, मेरे साथ शहीद किया किसी को, नहीं माफी मांगे काम बन गया। और फिर माफी मांगने पर यही फरमाया कि तुझे माफ कर देता हूँ। दादा ने फरमाया कि जब बच्चा बाप से माफी मांग लेता है कि अब्बा मुझे माफ कर दे, तो बाप क्या करता है, माफ कर देता है। माफ करने के बाद उसका जेब खर्च भी देना शुरू कर देता है। फरमाया अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जब तुम मुझसे माफी मांग लोगे और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे तो फरमाया तुम पर जो बारिश बंद हुई आसमान से अल्लाह ताला वो बारिश दोबारा बरसाने शुरू कर, तुम्हारी खेतियों को फिर से सैराब कर देगा अल्लाह ताला। दो किस्म की बारिश है, एक बारिश हर आदमी किसान बनेगी भाई, दो किस्म की बारिश होगी। एक तो किसान के लिए ये बारिश है कि उसकी खेती खराब हो रही है और एक बारिश रहमत की बारिश है कि दिल को खराब कर देगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश से उसके दिल की खेती को खराब कर देंगे, या वहाँ पर जो है गंदू की खेती रह रहेगी, यहाँ ईमान की खेती रह रहेगी। अल्लाह ताला से माफी मांग करके देखा। मेरे शेर फरमाते थे कि जैसे जब गुनाह करता है इंसान तो दिल तड़पने लगता है, दादा ने कहा कि गुनाह के बाद इंसान को सुकून नहीं मिलता, उसके दिल जिसम के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। किस वजह से? फरमाया कि अपने मालिक को नामालिक की नाफरमानी करने की वजह से जिसम और रूह दोनों बेचैन हो जाते हैं। जिसम और रूह को भी चैन नहीं आता, रूह भी उसकी तड़पती रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने गुनाहों और गुनाहगार की निशानी क्या बयान फरमाई? फरमाया ला यमूत फीहा वला यहया, ये ना जिंदों में ना मुर्दों के अंदर, जिंदा और मुर्दे के बीच में तड़पता रहता है गुनाहगार इंसान। जब जमाई आए तो मसला है कि जब जमाई आए तो मुंह पर हाथ, और हदीस में आता है कि जब जमाई आए तो उस पर जोर से आवाज भी ना निकाले बल्कि जितना हो सके उसको दबा ले और मुंह के ऊपर हाथ रखे। लेकिन बात करता लोग ऐसे लोग बोल देते हैं कि मच्छी के अंदर घुस जाती है, फिर हाथ करके फिर निकालना पड़ता है। लेकिन सुन्नत का जितना आसान तरीका था तो मुंह खोलो और हाथ रखे कि कोई ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाए। सुन्नत के अंदर शाले रखना थे इंसान के लिए, शरीयत में सिर्फ इंसान की
जिसे रूह के बोलने की जिसम की बेटी जिसम के लिए क्या माता ने लगता है तो गुनाह करने के बाद क्या होता है इंसान की रूह परेशान हो जाती है जिसम परेशान हो जाता है गुनाहगार इंसान का दिमाग हर वक्त गर्म रहता है मगर गर्म रहता है हथौड़े दिन रहे मोटे दिमाग में खोटे राजा का शेर राजा अक्सर पढ़ा फरमाते हैं देखते हैं मसले दिमाग में टूटे बताओ इससे मजाजी के मजे क्या मिले फरमाया क्या होगा दिमाग गर्म हो जाएगा परेशान हो जाओगे हम कोई भी तेल लगा रहे कोई फरमाया नहीं अल्लाह के रहमत का तेल लगाओ जिससे दिमाग ठंडा हो जाएगा अल्लाह से माफी मांग लो माफी की अलामत क्या है कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया एक इंसान माफी मांगना चाहता है लेकिन वो ये भी चाहता है कि मुझे ये भी तो पता चले अल्लाह ने माफ किया या नहीं अरे मौलाना मैं तो आधा घंटा बोलता था मुझे तो पता नहीं चला दादा ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखलाई कि अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे जिससे कोयले के पानी से और ठंडे पानी से अल्लाह को मुफ्त खताया आया बिना इज्जत की वजह पर कि अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे किस पानी से कोयले के पानी से और ठंडे पानी से तो हजरत अब्दुल्लाह का फुकुल अहमदुल्लाह ने फरमाया कि इसकी मतलब ये दुआ ये बताती है कि गुनाहों के अंदर दो चीजें एक इज्जत गर्मी है कि इंसान का जिस्म गर्म हो जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे गुनाहों को धो डाल जिससे ठंडे पानी फरमाया जब ठंडे पानी से धोया जाएगा तो आप गुनाहों की गर्मी निकल गई दूसरी चीज गुनाह करने से दिल के अंदर जुल्मत और अंधेरा पैदा हो जाता है फिर इंसान से अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रहती अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रहती इंसान को फिर कहता है अरे मौलाना लोग कहते हैं कहते रहते हैं हम तो किसी पर नजर नहीं करते हमें तो मुझे नहीं बोलता जो आदि हो जाता है काम करने का दादा ने कहा एक क्षण भंकी पारे नहीं रहता हो हमेशा भंकियों में रहता हो अगर उसको आप कहीं भूल का तरक्का सुना दे उसको कुछ असर होगा लेकिन एक आदमी ऐसा सी दुकान में बैठता है कभी उसकी वस्तु नहीं छूगी पर बार उसके सामने अगर जरा से भी पखाना आ जाए तो वो क्या होगा उसका चित्र चकराने लगी हो परमा जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने गुनाहों से पाक रखा है अगर एक गुनाह भी उनसे हो जाए एक जरा अचारिया के उनको गुनाह की लज्जत सामने नजर आ जाए फरमाया उनके दिल का कांटा हिलने लगता है फरमाया दो किस्म के कांटे दो किस्म के तराजू है एक लकड़ी तोड़ने वाला एक सोना तोड़ने वाला कांटे कई तराजू दो किस्म के होते नहीं एक कैसा लकड़ी तोड़ी जाती है फरमाया लकड़ी तोड़ने वाले के अंदर लकड़ी तोड़ने वाला वैसे ही 5 किलो उसका बट्टा ज्यादा रखता है क्योंकि वो कहता है ये लोहे का इतना बड़ा तराजू है कि 5 किलो तो पता ही नहीं चलता लेकिन फरमाया तो सोना तोड़ने का तराजू है फरमाया उसको सुनार जा सकता है अलमारी में बंद करके रखता है शीशे की और जिस वक्त सुनार सोना तोड़ता है उस वक्त सांस भी नहीं लेता कि सांस से सोने का जो है ग्राम आगे पीछे हो जाता है आचार्य आगे पीछे हो जाता है फरमाया अल्लाह ताला अपने औलिया का दिल गुनाहों से पार करके सुनार के तराजू की तरह बना देते हैं अगर एक आचार्य सुना उनके नजर आ जाता है एक आचार्य किसी के अंदर नमक होगा उनको उनके दिल के अंदर में फौरन महसूस हो जाएगा और जो गुनाह करके आगे हो गया वो कहते हैं हमारा हम तो टीवी देखते हैं हमें तो कुछ भी महसूस नहीं होता हम तो बदनजरी करते हैं आज यह आदत हो गई आज कहते हैं टीवी नहीं देखते और कैसे पास हो आज क्या हाल है उसी टीवी और उसी विज्ञान की वजह से ये आदत हो गई कि एक खत मिला उसके अंदर एक लड़की ने लिखा कि मुझसे मेरे बाप ने मत पे लिखी उसी कराची के अंदर लोग कहते हैं टीवी देखने से अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारी तरफ ही रुक जाएगी इस टीवी का आजाद है कि बाप के अंदर इतनी हयात चल गई जिस बेटी को उसने अल्लाह ने उसके जरूर से जन्म दिया उसके अंदर इतनी हैरत है उस बच्ची ने लिखा कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मुसलमान की मोहन की बच्ची लिख रही है محمد بن قاسم ایک مسلمان بچے کی پکار سن کر عرب سے نکل کر سندھ تک آ گیا تھا, اور آج مسلمان کے گھر کے اندر کی حالت ہے. یہ کس سے پھیلایا؟ یہ یہود و نصارا نے وہ چیز مسلمانوں کے اندر بھر دی کہ آنے کی ضرورت نہیں, خود کریں گے. یہ اس کے اندر ایسا آ رہا وہ بچے نے کہا کہ میں سونے کے لیے کبھی مسئلے کے نیچے اس کا سوتی ہوں کہ میرا باپ میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے, کبھی الماری پر چڑھ کر سوتی ہوں کہ میرا باپ میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے. کس تک پہنچایا؟ میری پیڑھی اور اسی امتیاز میں جس کو کیا کہتے ہیں آج مولانا کا ٹی وی نہ دیکھے تو ہمارا وقت کیسے پاس ہوگا, ہماری ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی دیکھو یہ مل رہی ہے. ارے ترقی شریعت کے اندر ہے, ترقی چیز ہے اسلام کے اندر ہے, ایمان کے اندر ہے, سنت کے اندر ترقی ہے, ترقی ٹی وی کے اندر نہیں ہے. عظمت اور عظمت اور اللہ تعالیٰ نے ٹی وی کے اندر نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے مومن کی عزت سنت اور شریعت کے اندر رکھی ہے. حضرت شاہ عبد الملک صاحب خود رحمت اللہ علیہ کو داستہ فرمایا, دادا نے فرمایا حضرت کا یہ حال تھا کہ اپنی جوان بیٹیوں کی طرف بھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. یہ حالت جس کے اندر ایمان کی غیرت ہوتی ہے, پھر یہ غیرت, یہ ایمانی غیرت. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا جب دادا نے وقت سنا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی نہ دیکھے؟ یہ جب ایمان جس کے اندر ایمان کی غیرت نہ ہو یہی سمجھتا ہے کہ ارے بیٹی کو بھی نظر کر کے نہیں دیکھتا. نہیں, جس کے اندر سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان سے بات کرتے تھے تو اس کی آنکھوں سے آگے ملا کر بات نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ کمال حیا, یہ کمال حیا ہے. آج اس بد نظری نے امت کو کس مقام تک پہنچا دیا؟ آج سوچے ہو کہ بیٹی باپ سے عزت چھپا رہی ہے, غنڈوں سے تو چھوڑے, باہر کے لوگوں سے چھوڑے, اپنے باپ سے, اور لکھا کہ میرے بھائی نے بھی میری عزت ہوئی. میں کہا تو میرے پاس زمین پھٹ جائے میں سب. آج مسلمان کے مسلمان کرانا ہے, مسلمان کہلاتے ہیں. آج یہ عزت مل رہی ہے ڈگری کے بدلے میں, یہ عزت مل رہی ہے سود کے بدلے میں, یہ عزت مل رہی ہے. جب سود کھائے گا حرام کھائے گا, حرام پیٹ میں پہنچے گا, کہاں سے سنت کو شریعت آئے گی, کہاں سے حیا آئے گی؟ اسی لیے سود کا اگلا گنا جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں, اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. جو ماں سے زنا کر سکتا ہے بیٹی سے کیوں نہیں کر سکتا؟ آج سود تو کس لیے ہے؟ کہتے اگر سود نہ لے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا, سود نہ لے ہماری معیشت نہیں چلتی. ارے سود سے اگر بریانی کھاتے ہو تو سنت کے ساتھ چٹی روٹی کھاؤ, اللہ تعالیٰ خود دیکھے سود کی بریانی سے سنت و شریعت کی چٹی روٹی اچھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور مومن ہے, سچا مومن ہے, اور اس کو سنت و شریعت کے مطابق اگر کام کرتا ہے تو چٹی روٹی ملتی ہے, اور اگر مولانا آپ لوگ ایسے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں, عورتوں کو مت دیکھو, عورتوں کو مت دیکھو, عورتیں کام نہیں کریں گی تو پھر زمانہ ترقی کیسے کرے گا؟ عورتوں اور مردوں میں مساوات ہونی چاہیے. بزرگ نے فرمایا ہنس کر کے کچھ عرصے کے بعد عورتوں کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایک بچہ ہم سے نے ایک مرد بھی جائے. آج تو ہر چیز کا مساوات ہے. فرمایا کہ آگے بڑھ کر آگے چل کر کے عورتوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ مساوات میں جب برابری ہے تو ایک بچہ ہم سے نے ایک شوہر سے نے. فرمایا کہ جن کے بتا جن کے بتا کیا ہے؟ سنت کو نکال دیا, سنت کو اپنے گھر سے نکال. لفظ قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ دوستوں یہ شریعت اور سنت ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا, دنیا کے عزت دنیا کے اندر دلوں کے اندر رہ گئے. زیادہ اچھا
ये होने वाला मकाम है कि बेटा बेटी के साथ इसलिए नहीं कर रहा है, उस एक जमाने में मुसलमान सोच नहीं सकता था, लेकिन आज क्या है, सूद की वजह से, गुनाहों की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से आज ये हालत हो चुकी है कि उम्मत की बेटी अपने बाप से छुपकर के सो रही है। पहले मुसलमान मुसलमान भाई अपनी एक मुसलमान बहन की एक आवाज के ऊपर क्या था, राजा दाहिर ने एक मुसलमान औरत को कैद किया, उसने जब फरियाद की कि हज्जाज कयामत के दिन मैं तेरा जुर्मान पकड़ूंगी कि मुझे राजा दाहिर ने कैद किया और तू मुसलमानों का खलीफा बन करके खिलाफत कर रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम, उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और लश्कर दे करके रवाना किया और कहा कि किसी मुसलमान के हैरत से रवाना नहीं कर सकती जो किसी मुसलमान की औरत किसी काफिर के तहत करे, आज मुसलमान के इज्जत मुसलमान के घर में महसूस रही। सोचो कि अगर क्या चाल है, किस तरीके से ईमान निकाला जा रहा है, टीवी कितने घर में पहुंचाया गया, कैसे बोला ना, हम तो सिर्फ खबरें देखते हैं, हम तो सिर्फ खबरें देखते हैं, जैसे बताया खबरें कौन बयान करती है, औरतें बयान करती है, उनको देखना जायज है, ना महरम को देखना हराम है या नहीं है, खबरें देखनी हो या कुछ भी देखना हो, फरमाए हराम पे हराम है चाहे कुछ भी करे, कितनी इज्जतें निकाल ले इंसान, कितने रास्ते निकाल ले, अगर सूरज को बकरे की खाल पहना दे तो सूरज बकरा नहीं बन जाता है, सूरज को बकरे की खाल पहना करके कह रहे कि मौलाना ये तो बकरा है, तो सूरज बकरा नहीं बनेगा, सूरज सूरज ही रहेगा। टीवी के ऊपर लाख इल्लतें बयान कर ली जाए कि इसके बगैर इंसान की तरक्की नहीं होगी, इसमें एक आदमी तकरीर करता है पूरा करोड़ों का करोड़ों इंसान सुन लेते हैं, अगर इस्लाम की इशात टीवी से लाजमी होती तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को सलाह के जमाने में भी टीवी अदा कर सकते थे, बोले भाई अल्लाह रसूल के पास था या नहीं था, और नबी से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला को किसी से भी, अल्लाह ने तो उस वक्त स्पीकर भी नहीं दिया था, टीवी तो दूर की बात है हराम की, फिर भी जब आखिरी हज्जतुल विदा किया है جو اللہ آج ٹی وی بنانے بن گیا اللہ اس وقت کہ ٹی وی آج اب چل رہا ہے نہیں سیٹلائٹ آج چل رہا ہے نہیں اللہ نے کیوں نہیں دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ فرما برداری نہیں ہوگی گناہگاری ہوگی जो कहते हैं अगर इसके अंदर खाली है कुदरती मनाते दिखाए जाए तो क्या हालत है, खाली कहते हैं कुदरती मनाते दिखाए जाए, दरा दिखा दिया जाए, फूल पत्तियां दिखा दी जाए, कहते हैं ये फूल के सिकड़ी दिखा दी जाए, दरख्त के ऊपर मेहनत दिखा दी जाए, फिर कहा जाएगा उसके नीचे कुछ और को दिखा दिया जाए, क्या हो गया, शैतान ने इसी तरीके से बात की थी और क्या तक पहुंचाया, इसी तरीके से तो टीवी और क्या तक होता है मुसलमान कहां से बचेगा, शरीयत ने जिस चीज से मना किया उसके अंदर इंसान के हया इंसान की गैरत और इंसान के फितरत के मुताबिक अगर उसको छोड़ेगा तो उसके अपने फितरत खुद पर बर्बाद हो जाएगी। फरमाए कि तुमसे अगर गुनाह हो जाए तो तुम कभी मायूस मत होना, कितने ही जिना कितने ही गुनाह गुनाह हो गए अल्लाह के दरवाजे पर आप मेरे बंदों से कह दीजिए अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्या मतलब दादा ने फरमाया यहाँ डंडे मारकर अल्लाह ने फरमाया कि अगर रहमत से मायूस हो गए तो दुनिया जहन्नम में डाले जाओगे, इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, कितने ही गुनाह क्यों ना हो जाए तो भी अल्लाह ताला के सामने एक दफा आप उठा करके अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, हो सकता सुमरियत की घड़ी हो अल्लाह ताला माफ कर दे, जब गुनाह करते वक्त नहीं शर्म आई। मालिक ने कहा था काबा के नूर से जाओगे गालिब शर्म तुमको अगर नहीं आती, काबा से दूर से जाओगे लाने शर्म तुमको नजर नहीं आती। अगर महाशाह मोहम्मद अहमद साहब इंतजारे बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे इलाहाबाद के अंदर, उन्होंने फरमाया कि गालिब को मैंने जवाब दिया क्योंकि गालिब ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को मायूस किया। फरमाया कि मैंने उसका जवाब दिया मैं इसी उम्र से काबा जाऊंगा, मैं इसी उम्र से काबा जाऊंगा, उनको मनाऊंगा अपनी डिग्री को यू मनाऊंगा। वरना गुनाह करते वक्त हया नहीं आई, गुनाह कर रहा था उस वक्त हया नहीं आई, अब जब माफी मांगने का वक्त आया तो कहता अल्लाह ताला से हया आई है, अरे अल्लाह ताला से हया आती है। बच्चा जिसको माँ से मोहब्बत हो, बच्चा बाहर बारिश में भीग करके आ जाता है उसको पता है कि माँ मारेगी कि भीगा क्यों, फिर भी भागता आता है माँ भी चिपक जाता है, फिर भी भागता आता है माँ भी चिपक जाता है, क्यों उसको पता है माँ मारेगी भी तो मोहब्बत नहीं मारेगी, माँ मारेगी भी तो मोहब्बत में मारेगी। अरे गुनाह करने के बाद अगर गुनाह हो भी गया फौरन अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे, उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत से चिपक जाए। लेकिन अखबार गुनाह एक तो गुनाह करना है, एक अस्बाब गुनाह के करीब रहना है, अस्बाब गुनाह के करीब भी ना जाए। दादा ने फरमाया अगर गुनाह के करीब जाओगे तो अंदेशा है कि गुनाह में उलझ हो जाओगे। क्यों फरमाया कि उसकी मिसाल ये कि झील का जलस्तर उसको आग के पास रख दो, बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा और फटेगा या नहीं फटेगा, क्यों इधर तो गर्मी तो बहुत रही है। फरमा इसी तरीके से जो गुनाह के करीब रहता है वो गुनाह के अंदर मुलविश हो जाता है, इसीलिए फिर हुआ यानी फिलहाल इख्तियार करो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ भागो, गैरुल्लाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ भागो। अगर शैतान कहता है गुनाह में बहुत मजा आएगा, उसको सोचो कि अगर गुनाह की हालत में अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना आजाब नाजिल कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा, उसी आजाब की हालत के अंदर रोज निकल गए फिर क्या हाल होगा। अगर इसी गुनाह की हालत में तौबा नहीं की, इसी गैर तौबा बगैर तौबा की अल्लाह के पास चला गया, क्या शिक्र सूरत देखे जाएगा, क्या चेहरा दिखाएगा अल्लाह, क्या अल्लाह जिंदगी भर गुनाह किससे आया हो। अल्लाह ताला से माफी मांगता है, ये नहीं है क्या मादा है गुनाह कम हो जाएगा, नहीं दादा ने फरमाया मादा है गुनाह नहीं, फिर अल्लाह ताला ऐसी बालुत हया पता फरमाएंगे जब इंदोजी गुनाह से बचने का पक्का इरादा कर ले, अल्लाह को राजी करने का इरादा कर ले। फरमाया फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसी बालुत हया उसको अता करता हूँ कि ये दुनिया की बादशाहत है, ये सोना चांदी, ये माल दौलत, ये सब कुछ उसके सामने फीकी पड़ जाती है। वो खालिक है जो जहाँ जिस दिन में आए हैं, वो खालिक है जो जहाँ जिस दिन में आए हैं, मजे दोनों जहाँ से बढ़ के पाए। और मैं तो सारी गाड़ी में अदम रखने लाए तो अपना हमें सल्तनत आता की थी, क्या चीज थी सल्तनत आता की गई। फरमाया सल्तनत इसलिए छोड़ी अल्लाह के लिए छोड़ी, फरमाया सल्तनत से बढ़कर मजा मिला जबी तो छोड़ी होगी। बोलो भाई अगर एक इंसान के पास आशा नहीं और आप उसको कह दिया ये चारा में ले लो आशा नहीं मुझे दे दो, वो क्या कहेगा, अरे चारा नहीं मेरा नुकसान कर रहा है, चारा नहीं का मेरा नुकसान करा रहा है। लेकिन अगर आप कहें ले एक रुपया और आशा नहीं मुझे दे दे तैयार हो जाएगा या नहीं। सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदब रहमतुल्लाह ने कुछ न कुछ तो पाया था जब तक अल्लाह ताला का सल्तनत कुर्बान कर दिया। एक दफा सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदब रहमतुल्लाह ने सारे निशापुर में दरिया के पास रहकर इबादत कर रहे थे, एक वजीर गुजरा करीब से उसकी नजर सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदब पर पड़ी, उसके दिल का ख्याल आया या अल्लाह ये कैसे आदमी है, सल्तनत छोड़ दी और दरिया के किनारे खुदली के ऊपर बैठकर अल्लाह का नाम ले रहे। सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदब रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने उसी वक्त इल्हाम किया। सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदब रहमतुल्लाह ने जो खुदली पी रहे थे वो सुई जिससे खुदली पी जा रही थी इसको उठाकर दरिया में फेंक दिया। अब ये वजीर वही खड़ा होकर के देखने लगा कि अब क्या होता है। सुल्तान इब्राहिम ने अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया कि ऐ मछलियों मेरी सुई ले आओ। अल्लाह जलाली दोनों अल्लाह फरमाते हैं ये हजार नारी जाएंगे, फरमाते एक हजार मछलियां सोने की सुई लेकर के हाजिर हो गई। सुल्तान इब्राहिम ने अदम ने फरमाया ऐ मछलियों सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे अपनी लोहे की सुई चाहिए। फरमाते कि मछली ने होका लगाया और लोहे की सुई लेकर के हाजिर हो गई। तो उस वक्त सुल्तान इब्राहिम ने अदम के वजीर ने फरमाया कि अगर आप सब कहते थे अल्लाह ताला ने आप तक जमीन की सल्तनत देकर खुशकी और जमीन दोनों की सल्तनत आपको अदा की। अल्लाह वालों की सल्तनत खाली जमीन पर नहीं होती, उनकी सल्तनत अल्लाह जमीन पर भी होती है, पानी पर भी होती है और हवा पर भी होती है, परिंदों पर भी होती है, दरिंदों पर भी होती है। इंसान अल्लाह का बन करके देखे, अल्लाह ताला सारी दुनिया को उसके दावे कर देते जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा, जमीन मेरी। खाजा सारा इस्तिलाले का शेर है जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा, जमीन मेरी, जो एक तू नहीं मेरा तो कोई शेर नहीं दे। हमारे यहाँ अगर सुबह हासिल कर लिया तो सारा जहां हासिल है, और अगर अल्लाह की जात को हासिल नहीं किया तो दुनिया की सारी दौलत इंसान के पास आ जाए, सारी बादशाहत उसको अपन कर दी जाए, सारी दुनिया की बहुत उसके मातहत कर दी जाए, सारी दुनिया की दौलत उसके कब्जों में डाल दी जाए, तो भी इंसान को चैन हासिल नहीं हो सकता। ये किसका ऐलान है? ये उसका ऐलान है जिसने इंसान को पैदा किया, क्योंकि गैजेट की बात नहीं सुना रहा, यह रब्बुल आलमीन की बात सुना रहा जिसने इस आलम को पैदा करवाया। फरमा के अगर इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नजदीक एक मक्खी के सर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला सारे कुफार के घरों को सोने की सोने से, अल्लाह ताला कुफार के घरों की छत सोनों से बनाता। लेकिन अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हकीकत एक मक्खी के सर के बराबर भी नहीं है। तो मच्छी के पर की क्या हकीकत है? कोई हकीकत है नहीं। ये तो तंजीम देने के लिए तैयार फरमाया, दादा ने एक दफा इशार फरमाया जो उसने फरमाया मच्छी का पर तो मिसाल देने के लिए तैयार फरमाया, वरना इस लोग मच्छी के पर की होगा तो उससे भी कम कर होता है दुनिया। क्यों? अल्लाह ये दुनिया पानी है, खत्म होने वाली है। दोस्तों अल्लाह ताला ने ये एक सवारी आदा की है जिस दिन की, किसी को चार फीट की सवारी थी, किसी को पांच फीट की थी, किसी को छह फीट की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ये जिस दिन तुम्हारा आदमी है, जिस दिन दाइनी है किसी का, कोई साठ साल किएगा, कोई सत्तर साल किएगा, लेकिन रूह अल्लाह ने दाइनी बनाई है। लिहाजा एक बुजुर्ग ने लिखा कि जो चीज आर्जी होती है उसको जो लज्जत मिलती है वो आर्जी मिलती है। यदि इंसान का आर्जी है आज है, अगर कल मर गया कब्र के अंदर डाल दो, तीन दिन के गर्मियों में कितने 24 घंटे, सर्दियों के अंदर 72 घंटे जिस दिन फूल के सड़ जाता है, जिस दिन फूल के सड़ जाता है और इतनी बदबू आती है। दादा ने फरमाया कि इतनी बदबू आती है कि अगर माँ बाप को भी करीब जाना हो तो नाक के ऊपर नाक बनकर देखे औलाद की बला सब दे हमारे ऐसा। तो फरमाया कि आदमी क्यों बदबू उसकी रजा में आदमी, जिंदगी की रजा आदमी क्या है? कबाब, गोटी, रोटी, चावल, दलिया, ये सब चीजें क्या है? आदमी। और दाइमी क्यों क्या है? और रूह की दिशा क्या है? अल्लाह का नाम। अल्लाह दाइमी और रूह दाइमी, ज्यादा उसकी रजा भी दाइमी होगी और जितने आदमी उसकी रजा भी आधी होगी। आज रजा खत्म, आज जितनी खत्म, अब रजा की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, मरने के बाद किसी को भूख लगती है? मरने के बाद इंसान कहता भी नहीं भूख लगी है, खाना ले आओ, या उसके सामने कोई अच्छे से अच्छा खा रहा होते वो खाने ले जाएगा, नहीं, क्योंकि आर्थिक दिशा थी, आर्थिक स्थिति था, आर्थिक जरूरत खत्म खत्म हो गई। लेकिन रूह उसकी जाएगी है और रूह जाएगी किसके पास? अल्लाह के पास। और अल्लाह भी अबदन अबदन रहने वाला है, दाइमी है, लिहाजा रूह को हमेशा रजा की जरूरत रहेगी। इसीलिए सारे सवाब का हुक्म दिया गया, इसीलिए सारे सवाब का हुक्म दिया गया। मुर्गा तो चला गया खबर में, लेकिन सारे सवाब करते रहो। क्योंकि दाइमी चीज को दाइमी जरूरत रहती है। धूल चली गई अल्लाह के पास, अब जिस दिन पड़ा है जमीन के ऊपर, अब जिस जिसम के ऊपर बन रहे थे, जान दे रहा था इंसान जिसके हजीब के हजूम में मुबतला हो गया, उस पर जान के रख रहा है, जान दे रहा है। दादा ने फरमाया उसी हजीब का जनाजा रखा हुआ है, फरमाया आप तुम्हारा जनाजा लेकर के निकले, कोई मुर्दा जनाजे में से घाट सकता है? फरमाया एक वक्त आएगा कि गुनाह छोड़ना पड़ेगा, गुनाह छोड़ दो, वरना एक वक्त आएगा कि गुनाह छोड़ना पड़ेगा। फरमाया वो छोड़ना कब पड़ेगा? फरमाया जब जनाजा लेकर के जाया जा रहा हो, उस वक्त कोई मुर्दा क्या अपना वो कपड़ा हटा करके कहता है मैं बदल नहीं कर लू, अब गुनाह छोड़ा तो क्या गुनाह किया? फरमाया जिसे जी गुनाह छोड़ दो तब गुनाह है, जिसे जी जिसने गुनाह छोड़ दिया अल्लाह ताला ने उसको कमजोर बना दिया, और जिसको दोस्त बना दिया फिर हर दोस्त अपने दोस्त का ख्याल रखता है। अगर आपका एक दोस्त लाहौर में, आप उसको यहाँ से फोन करते हैं भाई मैं क्या दो दिन के बाद तेरे पास आ रहा हूँ, तो वो दोस्त क्या करता है? पहले से इंतजाम शुरू कर देता है कि मेरा दोस्त आने वाला है। और जो बंदा दुनिया में अल्लाह से दोस्ती कर लेता है, अल्लाह ताला आखिर उससे इंतजाम शुरू कर देते हैं, उसके लिए जन्नत सजाई जाने लगती है, जन्नत मुजैया क्यों नहीं कर दी जाती है? जब वो जाता है तो उसके लिए अल्लाह ताला खबर को कुशादा कर देते हैं, और उसकी दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ताला बालुस बना देते हैं। इंसान को परेशानी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इंसान को क्या बालुस बनाना फरमाते हैं तुम दिलों का सुकून चाहते, दिलों का इत्मीनान चाहते हो, अगर दिलों का इत्मीनान चाहते तो मेरी याद के अंदर दिलों का इत्मीनान चाहिए, टीवी और मीडिया के अंदर दिलों का इत्मीनान नहीं मिलेगा। आज मुसलमान कहां से कहां पहुंच गया, एक वक्ता के मुसलमान मुसलमान के रिश्ता को आबरू के लिए अपनी जान नहीं दे रहा, आज ये आने के मुसलमान की औलाद अपने बापाप से अपने इज्जत की हिफाजत की जान बचा रही, जितने मजा आया हमें ख्याल करना, सुन्नत से दूरी, शरीयत से बहारत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहारत करने का नतीजा ये निकला क्या मुसलमान के दिल से इतनी हया निकल गई, इतना बेदर्द बन गया मुसलमान कि उसको गलत काम करते वो हया ही नहीं आती, हया क्यों निकल गई उसको सोचने की बात है, हया कैसे निकल गई? एक बच्चा है उसके माँ बाप इंतहाई हयादार है, अगर बच्चा हया से हया काम करता है तो लोग उसको क्या कहने देते हैं, लोग उसके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, अरे ये फलाने का बच्चा है जिसके माँ बाप इतने हयादार है, लेकिन पता नहीं इस नालायक के अंदर कहाँ से बेहयाई आ गई। ये उम्मत तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, क्यों दूसरों को बोलने का मौका दे मुसलमान कि ये उस नबी की उम्मत होकर के आज इतने बेमेहनत हो गए कि कहते हैं सूद के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारी तिजारत में बरकत नहीं है, अरे हमारी इज्जत नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के अंदर है, हमारी इज्जत गैरों के तरीके के अंदर नहीं है। आज मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को थाम ले, सुन्नत को थाम ले, अल्लाह ताला वही इज्जत फिर से आता फरमाएंगे, फिर से आता फरमाएंगे अल्लाह ताला। कुछ मुश्किल होगी, कुछ वक्त आएगा, लेकिन इंसान सब्र करे, इस्तकामत करे, अल्लाह ताला फिर वो मकाम अता फरमाएंगे। आज यही बात पेश कर रही क्या हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मुसलमान में मुसलमान बच्चिया क्या करें, जब बाप के हाथ इज्जत महफूज नहीं है उसका हाथ इज्जत महफूज है, ये हमारे लिए सोचने का मकाम नहीं है, और तो औरतों के लिए सोचने का मकाम है जो बेपर्दा बाजारों में घूम रही है, कितनी दूर नहीं है, घर के अंदर रहो, अल्लाह ताला ने औरतों को घर की जीना बनाया है, और नारायण फरमाई अल्लाह ने फरमाया सरकार नारायण फरमाना ये सब फरमाते हैं कि सबसे महरूम जगह अल्लाह के नजदीक ये बाजार है, और सबसे महफूज जगह अल्लाह के नजदीक ये मसाजिद है, मसाजिद वहां पिजामा पिरा दिए अल्लाह ने हुआ, ये बाजार सबसे बेहतरीन है, आज औरतों को देखो बहाना आज गर्मी के कपड़े लेने जा रही है, फिर उसके बाद बाहर के कपड़े लेने जा रही है, फिर सर्दी के कपड़े लेने जा रही है, आज बर्तन चूर के उसके लिए जा रही है। एक जमाना था कि सहाबिया के जमाने के अंदर उस वक्त हजरत अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरतों का निकलना बंद कर दिया जिस पर ऐसे खिलाफत कायम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना है, उस मदीने के रहने वाली औरतें कितनी पालता मन होगी। बोलो भाई उनके किरदार पर कोई शक कर सकता है? नऊज़ बिल्ला। बोलो भाई सहाबा नऊज़ बिल्ला कोई सहाबा के बारे में शक कर सकता है? अल्लाह ताला ने शक फरमा रहे हैं सब अनुहुन ने वराए ने हिजाब ए सहाबा अगर तुम महाजन मुमिनी से सवाल करोगे तो बच्चे के पीछे सवाल करोगे, हालांकि वो उम्मत की माई थी। कोई मोमिन सोच नहीं सकता इस जमाने में अगर कोई मुसलमान अगर सोचे तो मुसलमान उसको अपना मार मार के खत्म कर देंगे, थप्पड़ मार मार के खत्म कर देंगे। बोलो क्या नहीं? और उस जमाने के मुसलमान सहाबा जो नबी अलैहिस्सलाम की चौपट में रहने वाले उनको अल्लाह हुक्म दे रहा है किस लिए? ताकि बाद में आने वालों के लिए ये फिजरता बन जाए चाहे सहाबा ने नफरदा नहीं किया तो हम क्यों पता चल जब सहाबा ने पर्दा नहीं किया तो हम क्यों पता करें? अरे पता तो नबी अलैहिस्सलाम की जब सहाबिया आती थी सवाल पूछने के लिए या तो अजमाते मुताहरा को सवाल बता के जाती थी कि नबी अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछकर हमें जवाब दे दीजिएगा, यहाँ तक पढ़ते के पीछे जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती जब सही अल्लाह के सामने वाले की आ रही आज तीर अपने सामने बिठा लेता हो तुम क्या कहते हैं सब मिलकर जिक्र कर रहे हैं सब मिलकर जिक्र नहीं सब मिलकर खबासत कर रहे हैं सब मिलकर खबासत कर रहे हैं यकीन नहीं है। क्या हुआ दीन को अपने खुद अपनी तबीयत को दीन के मुताबिक नहीं बना सके तो सोचा चलो दीन को अपनी तबीयत के मुताबिक बना लें अपने लिए रास्ते निकाल लिए रहेंगे। मेरा तो आज उसी का हशर है उसी का हशर है कहाँ दुआ नहीं हो रही कि अल्लाह मुसलमानों को हमें अदा फरमा या अल्लाह मुसलमानों को इज्जत अदा फरमा या अल्लाह इस्लाम को गलबा अदा फरमा। आज क्यों नहीं गलबा अदा हो रहा क्यों नहीं गलबा अदा हो रहा? मेरे शेख फरमाते थे जो कौन खुद अपने गुनाहों पर राजी ना हो अपने गुनाहों पर माफी न मांगे फरमाया और उस कौम के ऊपर कभी अल्लाह ताला रहम नहीं फरमाते कभी उसको इज्जत अता नहीं फरमाते। जब लोगों ने ये सवाल किया था मेरे शेख से कि पहले फलस्तीन के लिए तो मक्की में दुआएं हो रही है मदीने मुनव्वरा में दुआएं हो रही है हरमैन के इमाम दुआएं करा रहे हैं और किस पे नमाज के अंदर दुआएं की जा रही है उनके लिए कि अल्लाह उनको इज्जत अता फरमा कुफार के जब से उनकी हिफाजत फरमा। मेरे शेख ने फरमाया जब तक अहले फलस्तीन खुद अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगेंगे अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे अल्लाह ताला उनको कभी हमारा आभार नहीं फरमाएंगे। आज हम अपने मुल्क के लिए दुआ को करते हैं लेकिन बाकी सब तैयार है हम गुनाहों से तौबा करें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुनाहों को छोड़ा अल्लाह की तरफ रुजू किया इसी मुल्क के अंदर रहते हुए उनको अमन से रखा हुआ है जिन्नत से रखा हुआ है किसलिए अल्लाह की तरफ रुजू कर दी। जो बच्चा महल में बिठता हो वो क्या करता है भागता है माँ के आवेश में एक सफर पड़ा पढ़ते ही भागता है ऐसा माँ की जाए बना और बोली माँ की गोद में पहुंच करके रू छुपाता है। अरे अगर दुनिया के अंदर कुफार के सफरों से बचना है तो क्या करो अल्लाह क्या वो से अकलत में भाग जाओ फिर उसके बाद देखो किसकी हिम्मत होती है। बस वाकुल दवाना है अल्लाह ताला ने हमें की तौफीक अता फरमाई।